Hi everyone, welcome to another episode of A New Kind of Celebrity. I'm your host Venal and I'm excited to bring you another inspiring and insightful conversation this week. At A New Kind of Celebrity, we define the word celebrity differently. We define it as someone worth celebrating. Our guests are people who are doing incredible work to make this world a better place. Join us as we celebrate these individuals and learn from their experiences, leadership, and wisdom. In today's episode, we celebrate Naresh Sijjapati. Naresh is the founder and CEO of Pana Foundation. Pana Foundation works in Ahmedabad to provide a multitude of services to migrant communities. From paperwork to legal services to unions and health and much more. Naresh started his journey as a migrant himself and went through multiple jobs working in factories, restaurants, and an NGO before starting out his own NGO. Thank you so much, Naresh, for joining me in this conversation. मुझे बहुत खुशी है आपसे फिर से थोड़ा बात करने का और आपकी जर्नी के बारे में और डिटेल में पता करने का और सीखने का. I would love अगर आप शुरू कर सकते हो हम सबको बताना कि आपने पना फाउंडेशन स्टार्ट क्यों किया, आपकी क्या जर्नी रही है कि आपने ये डिसीजन ले लिया.
ओके, तो अभी मुझे फील आ रहा है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ. तो बेसिकली पना जो स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज इन टीच फॉर इंडिया ओनली. मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं जहाँ से आता हूँ वो है एक माइग्रेंट कम्युनिटी. माइग्रेंट कम्युनिटी की जो गांव से यहाँ सिटी में आते हैं वो तो ऐसा कोई इतना वो नहीं रहता है कि घर ले लिया इसलिए आ गए, लेकिन कुछ पैसे कमाने के लिए. तो मेरा जो होम टाउन है वो नेपाल है और वहाँ पे अभी भी मतलब 2021 में भी लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छे रोड नहीं है और बोल सकते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं बोलते लेकिन जो बेसिक नीड है,
राइट,
जो आवश्यकताएं हैं वो भी अभी वहाँ पूरी नहीं होती है. मतलब वहाँ पे 90% जो घर के लोग हैं, जो घर के यूथ हैं, वो कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, मोस्टली इंडिया में आते हैं. और मैं भी उस टाइम पे शायद वैसा ही होगा. तो अगर आप सोच सकते हैं कि 2021 में अगर अभी भी लाइट और रोड नहीं है, पानी का समस्या है, तो 20 साल पहले वहाँ का हालत क्या होगा. तो मैं जब 20 साल पहले जब मैं इंडिया आया तो मैं उस स्थिति से होकर आया था. अभी तो हम लोग मेरे गाँव में कुछ गाँव से 4 से 5 किलोमीटर पहले तक हम लोग गाड़ी में जाते हैं, एक जीप जैसी होती है. लेकिन शायद मुझे याद है कि 20 साल पहले वहाँ पे वो गाड़ी भी वहां तक नहीं जाती थी. तो वहां पे लोग एक दिन पूरा चल के बस पकड़ने के लिए कहीं पे जाते थे. तो मैं भी जब नेपाल से इंडिया आया तो उस तरह का एक जर्नी किया और एक दिन तक लगभग 15 से 20 किलोमीटर चल के गाड़ी पकड़ने के लिए उस जगह पर गया और गाड़ी पकड़ के इंडिया आ गए. तो इंडिया आने के बाद मुझे लगा कि अच्छा, इंडिया में तो बहुत सारी गाड़ी है, मतलब इधर पे अच्छा अच्छा खाने को मिलता है. जब गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा सोच आता है कि मतलब बहुत सारा अच्छा लग्जरियस लाइफ होगा, लेकिन जब इधर पे आया तो समझ में आया कि वैसा कुछ होता नहीं है. पापा जो है वो अनस्किल लेबर हैं और एक कंपनी फैक्ट्री में 2000-4000 की जॉब करते हैं और मम्मी जो है वो किसी और दूसरे के घर में मेड है, जब मेड काम करती हैं, इस तरह से इनका जीवन चल रहा है और मुझे भी नेपाल से यहाँ बुला लिया है और अब क्या होगा. ऐसा जब मैं 6-7 साल का था तब ऐसा सोचते थे हम लोग. फिर थोड़े और दिन चलते रहे, समझते रहे और फिर 7-8 साल के होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो एक नीड है जो पैसा होना चाहिए, पैसा कमाने ही पड़ता है. क्योंकि सिटी में है तो जो पापा के 4-5 हज़ार रुपये हैं वो इनकम इनफ नहीं है, मम्मी जो मेड है उसके पैसे इनफ नहीं है. तो मुझे अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए या मेरा जो एजुकेशन कर रहा है, मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया गया. बोले आप सरकारी स्कूल में पढ़ो और उसमें एज अ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे वो दे दिया गया. तो मुझे ये लगा कि कुछ पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए, 1-2 रुपया. तो हम लोगों ने वो रेंट पिकिंग चालू किया कि मतलब 2-4 रुपया आ जाएगा. वो रेंट पिकिंग नहीं, लेकिन साइकिल की दुकान होती थी तब, 15 साल पहले साइकिल की दुकान होती. तो उसके बाहर वो साइकिल का छोटा छोटा आयरन लोखन का पड़ा रहता था, तो उसको उठा उठा के हम लोगों ने वो थोड़ा 2-4 रुपया इनकम करना चालू किया. थोड़ा 1 साल गया, 2 साल गया, 9-10 साल के हो गए तो समझ में आया कि अच्छा अभी चाय फैक्ट्री में जॉब करते हैं. फिर थोड़ा थोड़ा 10-11-12 साल के हुए तो बिस्किट फैक्ट्री में जॉब करना चालू किया. तो थोड़ा पैसा आ रहा था. तो मैं लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब छोटा था, जब 10-12 साल का था, तब से ही मेरे अंदर एक स्किल थी कि मैं छोटा छोटा पैसा कहीं से भी अपने लिए कमा लेता था. मुझे याद है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ 8वीं तक. 8वीं से पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं लेते हैं, आठवीं के बाद भी मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना था, तो मतलब गवर्नमेंट ही रहता है, तो मैं उस स्कूल में गया। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम आया कि स्कूल मॉर्निंग की हो गई, तो मुझे ऐसा कोई रिसोर्स ढूंढना था कि सुबह में मैं स्कूल चला जाऊँ, दोपहर में मैं स्कूल का पढ़ लूँ और थोड़ा दूसरा जॉब ढूंढ लूँ। जब मैं 10-15 साल का होने लगा तो मुझे दिमाग में आता था कि सब नेपाली लोग जितने भी हैं वो होटल लाइन में बहुत मिलते हैं, होटल लाइन या सिक्योरिटी लाइन में। तो मेरे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि झगड़े हो जा छोटे मोटे, तो मुझे ऐसा दिमाग में आया कि अभी चलो मुझे होटल लाइन की जॉब ढूंढ लेते जहाँ पे खाने को भी मिल जाए, रहने को भी मिल जाए और मैं वहीं से पढ़ने भी चला जाऊँ। मैंने होटल लाइन की जॉब ढूंढ ली, कुछ भी पानी वेटर हो या कुछ भी मिल जाए ऐसा बोल के चल दिया कि कोई भी होटल में जाके पूछने लगा मुझे कोई भी नौकरी मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा क्या, ऐसा पूछ के आई स्टार्टेड वर्किंग इन टू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। थोड़ा 1-2 साल काम किया, फिर 2-3 साल काम करके जब पानी वेटर और एचआईवी स्टीवर्ड बन गया। तो लगभग मैं जब 12वीं पास किया था तो मुझे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाओं का, क्योंकि 12वीं में जब मैं था तो मुझे यूँ था कि हमें जब वैकेशन होता था या जब जल्दी छुट्टी हो जाती थी तो मुझे ऐसा दिमाग में था कि कंपनी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे लोगों को रखा जाता है, जहाँ पे आप जाओ और थोड़ा काम कर लो फैक्ट्री में कंपनी में और उसका पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा या हफ्ते में एक बार मिल जाएगा। और मेरा जो होटल का जॉब था वो महीने का सैलरी देते थे, तो वो भी मैंने स्किल्स को रोल आउट किया। फिर 2012 में कॉलेज में आया तो थोड़ा यूँ समझ में आने लगा कि अच्छा ऐसा कोई रेपुटेशन, मतलब नॉट रेपुटेशन बट अपने ही विद्यार्थी इच्छा लोगों को अपने ही क्लास में ये जो बच्चे होते हैं उनको बताने के लिए कि अच्छा मैं होटल में अच्छा जॉब करता हूँ। तो वो सब वो छोटे मोटे जो जॉब थे, कंपनी फैक्ट्री में जाके हाथ काले करना, पुराने कपड़े पहनना, वो सब छोटा मोटा काम बंद करके खुद को सस्टेन करने के लिए या फैमिली को पैसे देने के लिए सिर्फ होटल में शाम को 3 बजे बाद जॉब चालू की। और आई थिंक वो जॉब भी मुझे 2011 से 14 3-4 साल तक वो जॉब कंटिन्यूस चालू किया और कॉलेज कंप्लीट किया। 2014 के एंड में मैं एक कल्कि रेस्टोरेंट है खोखरा में जो अगर आप जानते हैं, तो वहाँ पे मैंने जॉब चालू था मेरा। और तब मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे और थोड़ा ग्रो करना है किसको, तो तब मेरे दिमाग में मुझे जो दिख रही थी अपॉर्चुनिटी वो 2 अपॉर्चुनिटी थी कि अगर मैं इंग्लिश सीख लेता हूँ तो मुझे होटल में कैप्टन बनने को मिल जाएगा। तो मेरे दिमाग में उतना ही था, तो मैं हर जगह पे सोच रहा था इंग्लिश कैसे सीखूं, क्योंकि मैं जहाँ जिस कल्चर में था या जिस वर्क प्लेस पे था वहाँ पे किसी को इंग्लिश तो आती नहीं थी, और 1-2 मैनेजर्स को मैं जानता था जिनको अच्छी इंग्लिश आती थी लेकिन वो सिखाना नहीं चाहते थे। तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जहाँ पे मुझे इंग्लिश सीखने को मिल जाए, और मैं हर जगह 2-3 जगह पे जाकर पूछ रहा था इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ पे भाई 8,500 रुपये बोल रहा था 3 महीने का कोर्स होगा, आप थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। तो मुझे वो इतना वैल्यूएबल नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा सैलरी ही 8,500 रुपये था, तो मैं बोला इतना सारा पैसा मैं इन्वेस्ट इंग्लिश सीखने के लिए तो नहीं कर सकता। तो एक दिन की बात है जब मैं जॉब पे ही जा रहा था तो बस स्टेशन पे कुछ 2 फेलोज थे जो इंग्लिश अच्छी तरह बात कर रहे थे, तो मुझे लगा यार ये लोग इंग्लिश सिखा सकते हैं मुझे, तो मैंने उनसे ऐसा खाली ऐसे बात करना चालू किया कि अच्छा आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, मुझे इंग्लिश सीखना था, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ऐसे करके। तो उतना हमारा कन्वर्सेशन और हम तीनों बस में बैठ के मेरी होटल तक में आया, और बाद में पता चला कि वो लोग भी पीछे ही रहते हैं। फिर थोड़ा और 1-2 दिन गया तो बहुत सारा लोग आए इंग्लिश बोलने वाले, लाइक टीच फॉर इंडिया फेलोज थे वो लोग, और वो होटल में आए और मैं वहाँ पे उनको एक्साइटेड होकर सर्विस कर रहा था कि मतलब मुझे ऐसा था कि यार मैं इनके साथ इंग्लिश में बात करूंगा तो मुझे टिप अच्छा मिलेगा और मैं इनसे सीखूंगा कुछ, इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं सर हाउ आर यू कैसे हैं, मतलब वही 2-3 वर्ड आते थे इंग्लिश के, तो आई एम ट्राइंग टू से कि अच्छा मैं इस तरह से इंग्लिश बोलता हूँ, गुड इवनिंग सर, क्या ला सकता हूँ आपके लिए, तो इस तरह से आपका ऑर्डर क्या है, वैसा बोल के मैं उनको अपना कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। मैं तब उनसे शर्मा रहा था, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से वही ग्रुप में से 2 लोग आए और उन लोगों को मैंने बताया कि मुझे इंग्लिश सीखना है और मैं होटल लाइन में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, इस होटल में मुझे 1.5 साल हो गया है और मुझे सिर्फ इंग्लिश सीखना है और कुछ भी जॉब हो और मैं कॉलेज भी करता हूँ, इस तरह से मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ है होगा तो हम बताएंगे। फिर 4-5 दिन बाद मुझे ऐसा मैसेज आया कि अगर आपको ऑफिस में आके कुछ जॉब करना है तो आप आ सकते हैं और ऐसा आप एक बार इंटरव्यू दीजिए, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो यू कैन वर्क। वो रिज्यूम बनाने का बोला मुझे रिज्यूम का, तो मुझे याद है मैं 2nd ईयर बीकॉम में था और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कोई जॉब लेने के लिए रिज्यूम बनाना पड़ता है। मैं तब लग पूछा रिज्यूम कहाँ बनता है, तो इधर दौड़ के एक जगह पे गए कंप्यूटर साइबर कैफे में और एक नाम हम लिखवा के रिज्यूम बनवा लिया और रिज्यूम भेज दिया टीच फॉर इंडिया में और जाके बात किया लोगों को बताया। तो वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द टीच फॉर इंडिया ऑफिस तो वहाँ पे एक नया कल्चर देखने को मिला, एक अलग सा एनवायरमेंट था वहाँ पे, सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। और मुझे जो पता है कि जब मैं वहाँ पे गया मतलब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस था कि जहाँ पे भी जॉब करने जाते हैं तो वहां पे खाली भाई कहाँ पे जॉब किया है, कैसे किया है, और नौकरी मांगने जाओ तो कोई किसी को ऐसा पानी वानी नहीं पूछा जाता है, चाय नहीं पूछा जाता। मैं टीचर इंडिया ऑफिस में गया तो मुझे बोला गया पानी पियेंगे चाय पियेंगे, तो ये मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था, बड़ा एक्सपीरियंस था, मतलब समथिंग न्यू। तो मुझे लगा कि अच्छा ये दिस इज द प्लेस वेयर मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मैं आऊंगा तो इंग्लिश सीख ही जाऊंगा। तो मुझे सैलरी वैलरी का हमने बात नहीं किया, लेकिन इंग्लिश सीखने को मिलेगा कि नहीं ऐसा बात किया कि चलो इंग्लिश सीख जाएंगे। तो 1 साल हुआ मुझे ऐसा खाली बोला था हम आपको बताएंगे, लेकिन मुझे अभी भी याद है मैंने 25 नवंबर को दिवाली से पहले ही मैंने होटल में बोल दिया था भैया अभी तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मतलब आई थिंक मैं अभी अच्छी पोस्ट पे काम करने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे लैपटॉप दिया जाएगा, कंप्यूटर पे बैठ के काम करूंगा। मैंने अपने जो भी होटल में वेटर थे, कैप्टन थे, ओनर थे, जो भी थे, सबको मैंने बोल दिया था मेरा अभी बड़ा नौकरी लग गया है, वहां पे मैंने कोई सैलरी वैलरी डिस्पोज नहीं की, लेकिन मैं अभी अच्छी जगह पे नौकरी लग गया हूँ, ऐसा बोल के मैंने वहां पे जॉब छोड़ दिया। और आई वेंट टू द टीच फॉर इंडिया ऑफिस दिसंबर की 1 तारीख को, और वहां पे जाके सीखना चालू किया, मतलब कैसा कुछ पता नहीं था। और फर्स्ट टाइम मैंने टीच फॉर इंडिया में जाके एक लैपटॉप पकड़ा हाथ में, कि जहाँ पे ट्रेनिंग मतलब लैपटॉप सीखना होगा, तो मुझे तो पता चला कि मुझे एक्सेल वेक्सल मतलब वर्ड मतलब ये सब यूज करना होगा, तो मैं वो रात दिन वही सीखता रहता था कि कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, वो सब सीखा। फिर टीच फॉर इंडिया में जब गया तो 1-2 महीने मतलब आसपास 4-5 महीने के बाद मुझे बोला कि अभी ट्रेनिंग के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना है। आई थिंक आई मेट विद द लॉट ऑफ पीपल्स ओवर द टीच फॉर इंडिया इंस्टीट्यूट इन पुणे, तो वहां पे जाके मुझे बहुत सारे लोगों से, और मतलब टीच फॉर इंडिया में 40 लोग तो थे ही जो मुझे हमेशा सिखा रहे थे, और मैं वो सीख भी रहा था इंग्लिश, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मेरे लिए तो उतनी बड़ी बात थी कि भाई मैं 40 लोगों का रिइम्बर्समेंट देखता हूँ, और लैपटॉप मेरे हाथ में है हमेशा, मतलब जब मैं कम्युनिटी में वापस जाता था तो मैं वो लैपटॉप घर पे लेके जाता था, तो मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि मेरी कम्युनिटी में मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ। तो एक उस बात को मैं एक प्राउड फील करके उसको काम करता था। और जून के आसपास मैंने टीच फॉर इंडिया इंस्टीट्यूट में गया, तो वहां से मुझे टिकट भेजा गया फ्लाइट का, तो मेरे लिए एक और बड़ी बात है कि आज मैं पहली बार फ्लाइट में उड़ूंगा, फ्लाइट में जाऊंगा। तो एक मैंने वही चीजें मेरी कम्युनिटी में बताई कि मैं अभी फ्लाइट में जा रहा हूँ, तो कम्युनिटी में ऐसी बातें चलने लगी कि अभी तो नरेश बहुत बड़ा आदमी बन गया है और कम्युनिटी फ्लाइट में उड़ता है, ऐसा सब, मतलब दैट काइंड ऑफ गॉसिप गोइंग ऑन द कम्युनिटी एंड ऑल। देन मैं टीच फॉर इंडिया की ट्रेनिंग में गया, 1 महीना खुद को वहां पे सीखा, और मैंने जब मैं पहली बार गया तो मैंने वहां से सोच के आया था कि मैं अभी इंग्लिश के इतने सारे वर्ड सीख लूंगा कि मुझे इंग्लिश बोलने में यूं कोई वर्ड की ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तो मैं वो कॉन्फिडेंस लेके गया था मैं इंग्लिश सीखूंगा। तो वहाँ पे कुछ फेलोज को मैंने ऐसा ट्राई किया कि अभी मुझे फोटोकॉपी करना था एज एडमिन वर्क, तो मैंने दिमाग में लगाया कि अभी मेरे को इंग्लिश तो सीखने का सोच लिया है तो अभी क्या करूँ। तो मैंने सब लोग अपना टैगलाइन लगा रहे थे कि जिसको कुछ ना कुछ सीखना हो या कुछ ना कुछ सिखा सकते हो तो कुछ लिख दो यहाँ पे, तो टैगलाइन में मैंने लिख दिया कि मैं आपका फोटोकॉपी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाने पड़ेंगे। तो उन लोगों को ऐसा करके मैंने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखे कुछ ना कुछ करके। फिर जब मैं वापस आया तो बहुत चीजें, बहुत से अलग नई चीजें सीखी, और फिर 7-2 महीने वापस टीच फॉर इंडिया अहमदाबाद आए, और तब से मेरा दिमाग में ऐसा था कि यार मैं इधर से सीख के आया, वहां पे जब गया तो सब लोगों को सिखाने का कुछ ना कुछ एक जज्बा था कुछ किसी ना किसी को, लेकिन वही चीजें मेरी कम्युनिटी में नहीं होती है, या तो मेरी कम्युनिटी में हो सकता है जागरूकता नहीं है, या तो ऐसी कोई वैल्यूज नाम की चीज नहीं है, क्यों तो वो समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं है। फिर अराउंड 8वें 9वें महीने में दिसंबर 2015 के आसपास मैंने सोचा कि चलो अपने लोगों को कुछ सिखा देंगे, अपने होटल लाइन में जो भी लोग हैं कुछ ना कुछ सिखा देंगे अपन, जो मैंने इधर इंग्लिश के कुछ वर्ड सीख लिए हैं या तो कुछ कंप्यूटर वम्प्यूटर सीख लिया है वो मैं अपने कम्युनिटी वाले लोगों को सिखाऊंगा, ऐसा सोच के मैंने वो टीच फॉर इंडिया की जॉब में बोल दिया अभी मैं जॉब नहीं आ सकता, अभी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोलने वाला हूँ, और कुछ है मतलब तब पता नहीं था कि कौन सी खोलूंगा क्या खोलूंगा, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन खोलने वाला हूँ, और मैं जहाँ कम्युनिटी में रहता हूँ उस कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे वो पढ़ाने का ही स्किल्स मिला था कि मैं बहुत सारे फेलोज के विजिट पे जाता था, फेलोज कैसे पढ़ाते हैं वो सीख लिया था। सेप्टेम्बर में मैंने जॉब का छोड़ने का सोचा, और सेप्टेम्बर में ही एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा पता चला कि कोई भाई ये सब काम करने के लिए लीगली एक ट्रस्ट रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो सब मैंने पूछा कहाँ से होता है क्या होता है, फिर एक दो एडवोकेट को मिल लिया, ट्रस्ट रजिस्टर कर लिया, फिर ट्रस्ट रजिस्टर करने के लिए 7,500 रुपये खर्च कर दिए, तो एक हमारे लिए एक मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट टाइप हो गया कि अच्छा 7,500 रुपये खर्चा कर दिया है, तो एक प्रेशर बने लगा 7,500 खर्चा किया तो वो कहाँ से आएगा कैसे लाएंगे। तो धीरे धीरे टीच फॉर इंडिया की जॉब छोड़ने का ही सोच लिया कि अभी छोड़ देते हैं और दिल्ली पे फुल टाइम करते हैं। तो टीच फॉर इंडिया से जॉब छोड़ा तो 23,000 रुपया कुछ आया था PAPSI, तो उसको हम लोगों ने वो सेंटर सेटअप में लगा दिया, चलो सेंटर सेटअप कर लेते हैं। ऐसे सेंटर सेटअप करके पना फाउंडेशन नाम का एक NGO रजिस्टर्ड किया और सेंटर से हमने बच्चों को चालू कर दिया। तो वैसे मतलब जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस था 2015 से पहले, उस एक्सपीरियंस को लेके मैंने पना चालू कर दिया।
माय गॉड नरेश, इतने सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस और आपकी डिटर्मिनेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। कैन यू मतलब ऑल्सो शेयर कि अभी पना फाउंडेशन क्या क्या करती है, ताकि सबको थोड़ा पता चले कि अभी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या काम करती है पना फाउंडेशन?
ओके, 2015 में जब नया नया चालू किया तो हम लोग सिर्फ ऐसा सोच रहे थे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे बस, मतलब जो मुझे तब आता था तो बच्चों को पढ़ाएंगे इतना ही सोचता था और वही दिमाग में था। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोगों ने लर्निंग करना चाहा, मैंने लर्निंग करना चालू किया कि मैं बच्चों को तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन और कम्युनिटी में क्या नीड है, क्या समस्या आ सकती है बच्चों को। तो वो बच्चों को पढ़ाने आता था तो बच्चे को ये पापा मम्मी यार इसका आधार कार्ड नहीं है, इसका पैन कार्ड नहीं है, ये बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, या तो औरत आके बोलती है कि भाई ये इसके पापा पीते हैं, इसके वो पैसा अच्छा नहीं कमाते हैं, ये चीजें जो मुझे पता ही थी ऑलरेडी, लेकिन वही समस्याएं लोग मुझे आके बता रहे थे क्योंकि मैं उनके बच्चों को पढ़ा रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा यार ऐसे ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कुछ समस्याएं लेके, तो मैं ऐसा कुछ सिस्टम बना देता हूँ। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम 2015 एक साल सब लर्निंग में गया, 16 में हम लोगों ने एक लेबर रिसोर्स सपोर्ट सेंटर खोल के एक सेंटर खोल दिया कि जहाँ पे लोग आएंगे अपनी समस्याएं बताएंगे, जिसका हम हल ला सकेंगे वो हम लाएंगे। तो वैसे ही नीड नीड हम लोग ढूंढते रहते थे कि भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ, कुछ भी हो तो हम बैठे ऐसा कुछ हमको आता है तो हम उसको सॉल्यूशन ला के देंगे। तो वैसे ही हमने होटल लाइन में चालू किया, कंपनी फैक्ट्री में बनाना लोगों से मिलना चालू किया, फिर अलग अलग सेक्टर के लोगों को मिलना चालू, मतलब जो लेबर थे उनको मिलके बताना चालू किया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमको बता, तो हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आके एक हम लोगों ने एक लॉन्च किया कि जितने भी हमारे लेबर क्लास लोग हैं उनके लिए हम लोग एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन खोलेंगे, जहाँ पे उनको डॉक्यूमेंटेशन का सर्विस मिलेगा, लीगल सर्विस मिलेगा, बच्चों को एजुकेशन में सपोर्ट करना है तो हम वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने एक सेंटर बनाया और खोल के चालू किया। तो उस तरह से धीरे धीरे करते गए, एक साल डेढ़ साल तक वही उसी के पीछे लगे रहे रेवेन्यू जनरेट करने का। तब तक हम लोग मतलब ऐसा था कि भाई पैसा नहीं आएगा तब तक कहाँ से करेंगे, तो 100 रुपया लोगों से चार्ज करना चालू किया कि भैया तुमको अगर तुम्हारा ESIPF निकलवाना है तो 100 रुपया, पैन कार्ड बनाना है तो 150 रुपया, और तुम्हारा बैंक खाता खोलना है तो 50 रुपया। और फिर धीरे धीरे वो सीखते गए। तो फिर एक साल बाद हमें पता चला कि अच्छा ये सर्विस चार्ज हम नहीं लेंगे तो भी बैंक हमको चार्ज करने के लिए तैयार हुई, तो हम लोगों ने बैंक से रेवेन्यू जनरेट चालू किया। फिर धीरे धीरे मतलब 2018 आया तो हमें पता चल गया था कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है या बहुत नीड है इसकी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे हम लोगों ने अहमदाबाद में सेंटर बढ़ाना चालू किया कि हम लोग अलग अलग सेंटर खोल सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। एक लेबर रिसोर्स सेंटर मेनको पे है, तो दूसरा नरोड़ा पे खोल दो, तीसरा अहमदाबाद दूसरी जगह पे खोल दो। तो ऐसे हम लोगों ने अहमदाबाद में 7 सेंटर खोल दिए। अभी फिलहाल 7 सेंटर है अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे हम लोग डेली हर सेंटर पे 10 से 20 लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को बताने हैं और उनके समस्याओं का समाधान हम लोग लाते हैं। हम लोग होटल हुआ, फैक्ट्री हुआ, इन लोग का हम लोगों ने एक यूनियन बना रखा है कि होटल का यूनियन हो गया अलग से, फिर ऑटो ड्राइवर का एक यूनियन बना के रखा है, फैक्ट्री वर्कर्स हैं तो उनका एक यूनियन बना के रखा है, फिर बाद में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं मुझे बाद में पता चला कि स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन बना के रखा है। तो ऐसे 4 से 5 एसोसिएशन हम लोगों ने अपने नाम पे रजिस्टर करके रखे हैं और उनको हम लोग एक बोलते हैं कि कलेक्टिव एक्शन, कि भाई कुछ भी तुम्हारा इशू होगा तो वो कलेक्टिवली आप जाके सॉल्यूशन लाएंगे और हम लोग आपको उसमें से फैसिलिट करेंगे, क्योंकि जो आपकी समस्याएं हैं वो हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे होगा कैसे होगा, लेकिन वो करना तो आपको ही पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने यूनियन बना के रखा, और कहीं भी आपका काम रुकता है तो हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर रजिस्टर करके रखा है, तो किसी यूनियन का काम रुकता है या किसी बंदे का काम रुकता है तो हम लोग एक मीडिया बन के जाके सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने हमारा एक मोमो किंग है, जिसको अगर जॉब नहीं है तो हमारे मोमो किंग में आए, हमारे यहाँ से मोमोज ले जाए और उसको कुछ खर्चा नहीं करना, हम लोग सब हेल्प करेंगे, आपको पैसे ला के भी देंगे, लोन करा के देंगे, या जो भी हमारे वेंडर जो भी हमारे सपोर्टर है वो आपके लिए पैसा ही डोनेट करेंगे और हम आपको एक बिजनेस सेटअप करके देंगे, आपको मोमोज ले जाना है वहाँ पे कर सकते हो। और फिर हमारे अलग अलग छोटे छोटे दूसरे रेवेन्यू मॉडल्स चलते हैं जो पना कंसल्टेंसी है, तो हम लोगों ने बैंकों के साथ टाई अप करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे हम लोगों का विश्वास करते हैं लोग कि नरेश भैया बोलेंगे या पनाह वाले कुछ बोलेंगे तो ही हम करेंगे। तो अगर कोई कम्युनिटी वालों को बैंक अकाउंट खुलाना है तो कम्युनिटी हमारे पास आते हैं, हम बैंक के पास लेके जाते हैं। तो बैंक वालों के साथ हमने राय कर दिया, आप अकाउंट खुलाओगे तो हम आपके पास इतने सारे अकाउंट लेके आ सकते हैं, आप हमें कमीशन दे सकते हो। तो वैसे एक रेवेन्यू मॉडल बना के रखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग हाइब्रिड टाइप मॉडल बना के रखा है। और रिसेंटली हम लोग अभी लगभग लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों के साथ हर काम कर रहे हैं। और एक कोविड स्टोरी है, कोविड में हम लोगों को नहीं पता था कोविड में हम काम करेंगे, लेकिन जो हमारे 4 से 5 सेंटर रनिंग चल रहे थे 2020 में, वहां से ऐसी नीड आई कि मतलब जो रोज आधार कार्ड पैन कार्ड या ESIPF या जॉब के लिए आने लगे आते थे लोग, वो कुछ दिनों बाद मतलब हमने 15 तारीख को बंद किया था, 30 तारीख को लोग सिर्फ जॉब वॉब का इशू छोड़ के हमारे पास राशन मांगने आने लगे, सेंटर में राशन चाहिए या खाने का चाहिए, मतलब इस तरह से दूसरी इशू आने लगी। जो भी हमारी कम्युनिटी है वो माइग्रेंट एरिया से ही कम्युनिटी है। जब हमें ये पता चला तो हम लोगों ने वो राशन चालू किया पिछले साल 2020 में, हमने राशन ड्राई राशन प्रोवाइड करना चालू किया। तो ऐसे हम लोगों ने मोर देन 7,500 फैमिलीज जो हमारे कम्युनिटी में रहती है उनको हम लोगों ने राशन डिलीवर किया। फिर ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया, क्योंकि माइग्रेंट कम्युनिटी थी तो ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाई, ज्यादा टाइम उस कम्युनिटी में रह नहीं पाई, क्योंकि मोस्टली रेंटेड लोग थे तो सब लोग गांव जाना चाहते थे। तो हम लोगों ने फ्लाइट बस ट्रेन करके बैक टू वापस मतलब उनके गांव हम लोगों ने वापस ले जाना चालू किया। फिर 2021 में वही कम्युनिटी में इश्यूज दूसरे चेंजेस हो गए कम्युनिटी में, लेकिन अहमदाबाद सिटी में हम लोगों ने काम चालू किया। तो ऑक्सीजन डिलीवर करना, फिर हम लोगों ने जब मैं हॉस्पिटल में गया तो एम्बुलेंस का नीड लगा मुझे, बहुत सारा एम्बुलेंस की जरूरत था। और हमारे कम्युनिटी में भी बहुत बोले थे नरेश भैया एम्बुलेंस नहीं आता है बहुत टाइम तक, तो हम लोगों ने वो एक ऑटो एम्बुलेंस चालू कर दिया कि चलो हम लोग ऑटो ही को ही एम्बुलेंस बना लेते। तो ऑक्सीजन पहले दिन तो खाली ऑटो ही मैं खाली ले जाना और लाना रखा था, लेकिन दूसरे दिन ऑक्सीजन भी उसी में रख दिया जब हमको नीड लगा। तो फिर मेडिसिन हम लोग फ्री में देते थे और ऑक्सीजन सिलेंडर देते थे कुछ, मतलब 2 साल में हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया रेज करके हम लोगों ने कोविड में डायरेक्ट इम्पैक्ट किया यूजर्स को, अराउंड 12,000 लोगों को हम लोगों ने डायरेक्ट इम्पैक्ट किया, 12,000 फैमिली नॉट लोग बट फैमिली। और फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आई तो हम लोगों ने लगभग 1,000 से 1,200 लोगों को बिजनेस रीस्टार्ट कराने में हेल्प किया कि जो लोग हमारे पास आते थे लोन की एप्लीकेशन करते थे, बोलते थे हमको लोन चाहिए, और उसका लोन का एप्लीकेशन हम लोग बैंक तक पहुंचाते थे और हम लोग उनका लोन सैंक्शन करवा के उनको लोन देते। तो ऐसे 1,000-1,200 लोगों ने हमारे साथ लोन लेके बिजनेस रीस्टार्ट किया, अभी तक यहाँ तक हम लोगों का जर्नी है। और अभी हम लोग वही जो पूरा जो 5 साल का लर्निंग रहा नया, उस लर्निंग से ऐसा पता चला कि अभी पूरा सिस्टम एक डिजिटल हो रहा है, तो हम लोग अभी कोविड है डिजिटल सिस्टम है और बहुत सारे लोग डिजिटल ही जाना चाहते हैं, तो हमारे जो बेनिफिशियरी हैं उनको हम लोग हर किसी को रीच आउट नहीं कर सकते हमेशा, तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया है जो एक रेवेन्यू मॉडल हो और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। तो अगर यूजर्स है तो जैसे किसी को अपने बारे में गवर्नमेंट स्कीम्स है या जो भी हमारी जो छोटी मोटी सर्विसेज हैं, जॉब सर्च है, लीगल एडवाइजरी है या तो हेल्थ से रिलेटेड है, वो हमारी एक एप्लीकेशन में आ जाएगी। और अभी हम लोग जैसे एक नरेश भाई 2015 में आया था, नरेश भाई जो 2015 में जो सोच के आया था वही सोच हम लोग हमारे और नरेश भाई ऐसे कैसे बनाए, वो सोच के हम लोगों ने अभी एक साथी करके एक चालू किया है। तो हम लोगों और साथी कैसे बने जो कम्युनिटी में जाके इम्पैक्ट करें, कि जिस तरह से नरेश ने सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी में करूंगा वैसे ही और कम्युनिटी के लोग कैसे आए जो अपनी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ हेल्प करें, वैसा हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है और अभी चालू कर रहे हैं।
बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है नरेश, इतना सारा काम और इतना मतलब डाइवर्स काम, मतलब लीगल सर्विस, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल, राशन, तो आई मीन वेरी वेरी एक्सटेंसिव एंड इंस्पायरिंग। बट जब आपने चालू किया, जब आपने डिसीशन लिया कि अच्छा मैं ये टीचर इंडिया का जॉब छोड़ के मैं ये पढ़ाऊंगा बच्चों को इन माय कम्युनिटी या ये सेंटर चालू करूंगा, एट दैट पॉइंट आपको वो हिम्मत कैसे आई, क्योंकि आप काफ़ी यंग थे राइट उस टाइम पे, अभी भी यंग हो बट उस टाइम पे ज़्यादा थे, तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोग सोचते कि अच्छा मैं और स्टेबल जॉब में जाता हूँ और थोड़ा मतलब सेटल होता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ। तो उस टाइम पे आपने वो डिसीशन कैसे लिया कि आप वो जॉब छोड़ के ये स्टार्ट करेंगे पना फाउंडेशन, और आपकी तब उम्र क्या थी?
आई थिंक मेरी तब उम्र 21 साल की थी, मैं टीचर इंडिया 20 साल में गया तो 21 साल की मेरी उम्र थी। लेकिन तब मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मैं सक्सेस होऊंगा या मतलब क्या होगा, लेकिन हिम्मत इसलिए आई कि मैं शायद ऐसे लोगों को जानता था जिनको ऐसी नीड है, और मुझे ऐसा वो मेरे आइडिया पे विश्वास हो गया था कि अरे यार इधर पे डॉक्यूमेंटेशन वाले को हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या करूंगा या कैसे करूंगा, लेकिन वो एक बार चलो ट्राई तो करते हैं, नहीं तो जब मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरा एक तो पिच फॉर इंडिया से और इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश सीख लिया है और अच्छा बोल लेता हूँ मैं और अच्छे स्मार्ट लोगों को जानता हूँ, तो अगर मैं उनको भी बोलूंगा तो मेरा एक साल पहले का जो जर्नी था, एक साल पहले मैं बेटर था, अगर मैं इधर फेल हो गया, एक दो साल इधर दिया और फिर कुछ कर नहीं पाया, तो मैं वापस वेटर का जॉब तो मुझे मिल ही जाएगा। मतलब 8,000 पगार था, अभी इंग्लिश सीख लिया तो 10-12 हज़ार रुपया तो मैं वो कमाई लूंगा। तो वही सोच के ऐसे ही चालू कर दिया कि 8-10 हज़ार रुपये का वापस जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा कोई कोई बात नहीं है। और वो 23-24 हज़ार रुपये पड़े थे, तो हम लोग बोलते हैं जब पैसा हाथ में आता है तो खुजली होती है, तो 23-24 हज़ार रुपये क्या खर्च कैसे खर्च करूँ सोच रहा था मैं। एक 4,000 रुपये का कंप्यूटर ले आए और थोड़ा एडवांस दे दिया, तो वो खत्म हो गए पैसे। तो उसके बाद फिर सोच रहे थे कि रेवेन्यू कैसे आएगा, वो कैसे होगा, कैसे मैं अपने खुद को सस्टेन करूंगा। तब अच्छा था कि मेरा इतना मतलब जब हम लोग होते तो हमारा दिन जो है 100 से 150 रुपये में चल जाता है। जब मैं 2015-16 में था तो उस टाइम पे ऐसा कोई मेरा एक्सपेंस नहीं था, कोई रेंट देना नहीं था, तो घर का खर्चा मम्मी मतलब इधर उधर से कर देते थे। फिर धीरे धीरे सीखते गए तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और वो हिम्मत जो थी लगा के अच्छा हिम्मत करके कर लिया है, तो एक आइडिया बन गया।
अमेजिंग। और आपने जो रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं तो लोग जनरली एनजीओ में सिर्फ फंड रेज करने की बात करते हैं, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सस्टेनेबिलिटी का वो भाग आप अंदर लाए कि आप रेवेन्यू जनरेट करके ताकि वो खुद से ही सस्टेन हो। तो आप कहाँ कहाँ से, और आपने बोला कोविड के टाइम में आपने काफ़ी फंड्स रेज भी किए, तो आप कैसे अप्रोच करते हो सस्टेनेबिलिटी के लिए? वो एक क्वेश्चन है कि रेवेन्यू मॉडल्स, फंडिंग एक्सेट्रा। और दूसरा, आपने ये मल्टीपल जो सेंटर्स खोले, तो कौन कौन काम करता है आपके साथ और वो लोग कैसे जुड़े आपके साथ?
तो इसका भी मतलब मुझे जो पता है 2015-16 में जब चालू किया था तो ऐसा मतलब तब ऐसा हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि हम लोग तब ये सोचते थे कि मेंबरशिप लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। और 2015-16 तक मुझे ऐसा कुछ फंड रेजिंग वर्ड मेरे पास नहीं था। 2015-16 में मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा लोग फंड देते हैं, वो भी मुझे नहीं पता था कि फंड रेजिंग ऐसे करते हैं। फिर 2017-18 में तो मैं जब SSC इंडिया गया तो कैटो के बारे में समझ में आया, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डोनेशन कैसे मांगना है वो सब सीखा मैंने, अभी भी सीख ही रहा हूँ। लेकिन तब दिमाग में यही था कि मुझे एक ऑफिस भी चलानी है तो सबसे पहले चाहिए पैसा, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हम लोग फंडर्स तो दूसरे नंबर पे आते थे, लेकिन पहले मेरे को ये था कि भाई मैं सर्विस किसको दे रहा हूँ, किसी का डॉक्यूमेंट बना के दे रहा हूँ या किसी को मैं बच्चे को पढ़ा के दे रहा हूँ, किसी के बच्चे का एडमिशन करा करने जा रहा हूँ, तो मैं ये क्यों दूँ? तो ऐसा मुझे वही दिमाग में था। तो या तो हमारा मेंबर होना चाहिए, मेंबर बनने के लिए भैया 100 रुपये देने पड़ेंगे तुमको, तो आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, आपके बच्चे का एडमिशन में कोई इशू है तो उसके लिए, तब तो मैं ही अकेले जाता था, मैं चला जाऊंगा, और आपका कोई लीगल इशू है तो लीगल इशू के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ कर देंगे आपका, मैं जो बात जानता हूँ मैं जाके बात कर लूंगा, या तो कोई हेल्थ सर्विस है कहीं से हम लोग किसी को जानते हैं तो हेल्थ सर्विस के लिए जो हमारे मेंबर होंगे उसको हम लोग सर्विस देंगे। तो 2015-16 में लगभग हम लोग मेंबरशिप सिस्टम पे ही चल रहे थे, तो मेंबरशिप सिस्टम भी इतना अच्छा वर्क किया कि मुझे लगा कि लोगों को सबसे नीड है यार, कि मैं 100 रुपये मांग रहा हूँ तो भी लोग 100 रुपये भी दे रहे हैं, खाता अकाउंट भी खुला रहे हैं, पैन कार्ड भी बना रहे हैं, और कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो लोग बना रहे हैं, अच्छा अच्छा नीड लग रहा है लोगों को। फिर धीरे धीरे चालू किया तो वो मेंबर्स इतना लोग आने लगे, फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा अच्छा 100 रुपये ले रहे हैं और एक बंदा 4-5 बार काम करा के जा रहा है, तो वो फिर दिमाग में आने लगा अच्छा अभी ये मेंबरशिप छोड़ दो, मेंबरशिप का 50 कर दो और रेवेन्यू टाइप कर दो, कि अगर किसी को लीगल में केस करना है, और केस भी इतना बड़ा हो जा रहा था, सपोज कि हम लोग केस कैसे देते हैं कि किसी को बैंक में अगर जो लेबर क्लास लोग हैं उनका बैंक अकाउंट होता है, लेकिन बैंक अकाउंट में उनके पैसे जमा होते हैं और किसी का डेथ हो गया, तो उसका वो जो नॉमिनी का प्रोसेस करना है वो हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग इधर लीगल पार्ट बोलते हैं। कोई जॉब कर रहा है वर्क प्लेस पे और उसका डेथ हो गया, तो वो वर्क प्लेस पे जो क्लेम करना है उनको तो पता नहीं होता है, कि उनको तो ऐसा लगता है कि डेथ हो गया तो अभी खत्म हो गया सब कुछ, या तो मालिक दे दे पैसा कुछ ना कुछ, या तो अभी गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी स्कीम होगी कि हम पैसा विश्वास, मुझे जो विश्वास है कि भाई कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ तो बना है, ये मेरा एक अंदर से बिलीव है कि एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, उसको सिर्फ ढूंढना है। तो वही सोच के हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि कहीं मर गया है तो कुछ होगा। तो हमें ये पता है कि अगर किसी के पास एटीएम भी है तो कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम से या सिस्टम बनाया है कि एटीएम भी है तो कुछ पैसा मिल सकता है गवर्नमेंट से या बैंकों से, या तो क्लेम कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्लेम करने का भी चार्ज चालू कर दिया, क्योंकि अगर हम नहीं होते तो तुमको कुछ मिलता ही नहीं, तो हम है तो हमको कुछ चार्ज दो। तो हम लोगों ने उसका एक रेवेन्यू मॉडल सोच लिया, तो वो धीरे धीरे चलता गया। तो वो इसीलिए इंश्योरेंस है, तो हम किसी को अगर इंश्योरेंस देते हैं तो वो उनका फायदा हो रहा है, लेकिन उससे हम लोग उनसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कंपनी को लेके आ रहा हूँ, सपोज मैं किसी एक बड़ी कंपनी को लेके आता हूँ और बोलता हूँ भैया मैं तुमको 100 इंश्योरेंस एक ही दिन में करवा दूंगा, तो उसके लिए आप मेरे को क्या दोगे? क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं उस ट्रस्ट के लिए किसी बैंक या कंपनी से बोल सकता हूँ कि भैया मुझे पहले वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे आपसे लेके जा रहा हूँ तो मेरे लोगों को कुछ फायदा होगा या नहीं। तो उनसे लेके आए, सपोज मेरे को किसी ने बोला 12 वाला इंश्योरेंस आप मेरे को 100 चाहिए, आपको मैं पर इंश्योरेंस 2 रुपया 5 रुपया दे दूंगा। तो उस तरह का एक रेवेन्यू मॉडल बनाना चालू किया और धीरे धीरे ही उसको ही एक्सपेंड करते गए, और वही दिमाग में था। तो जो बाद में फंड रेजिंग, वो तो मतलब अभी 2018 में हमको हमको लगा कि अच्छा यार मैं अभी सेंटर बहुत सारे खोलने भी चाहता हूँ, तो वो 2018 में पता चला कि अच्छा इसके लिए मुझे फंड रेजिंग भी कर सकता हूँ, डोनेशन मिल सकता है। तो इस तरह से वो बाद में चालू किया।
वेरी इंटरेस्टिंग. और इतनी जानकारी सारी स्कीम्स के या डॉक्यूमेंटेशन, या आपने पहले बोला आपने यूनियन भी, तीन चार अलग अलग यूनियन भी सेटअप किए, तो आपको इतनी जानकारी मिली कैसे कि दूसरों के हेल्प करने के लिए? आपने खुद सीखा जब क्वेरी आती थी कि कैसे किया ये?
मैं जो मेरा जो अंदर का ट्रस्ट है ना कि कोई आके अगर बोलता है ना कि मुझे ये चाहिए तो वो गलत नहीं होता है। मतलब उसने कहीं सुना होगा, भले उसको पूरा ना पता हो, लेकिन उसने कहीं ना कहीं सुना है या ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो या तो हम लोग गूगल करेंगे या तो हम अपने रिसोर्सेज को पूछ लेंगे, क्योंकि जब पहले पहले जब स्टार्टिंग में तो हम लोग गूगल ही करते थे, तो गूगल में जानकारी मिलती है, लेकिन भले ही वो प्रैक्टिकल ना हो लेकिन बहुत सारी जानकारी गूगल पे या अपने ग्रुप में मिल जाती है। तो वो तब इतना दिमाग में था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया कि अभी हमारे पास एक नेटवर्क हो गया कि मेरे को कोई पूछने आया कि भैया ये जानकारी, तो भले तब मेरे पास ना हो लेकिन मैं कहीं ना कहीं से वो ले आता हूँ। लेकिन अभी तो एक हैबिट हो गई है कि कोई भी कुछ पूछता है तो वो तुरंत हम लोगों के पास जवाब होता है। तो उसी को हम लोगों ने उसी हिसाब से हमारे स्टाफ को ट्रेन कर दिया, जो हमारे रिसोर्स लोग हैं उसको ट्रेन कर दिया कि भैया कोई भी आके कुछ इस तरह का पूछे तो एक मतलब एक्सेल शीट बना दिया है, एक फॉर्मेट बना दिया है कि कोई आके ऐसा पूछे तो इसको इस तरह से जवाब देना है, ये पूछे तो इसको इस तरह से जवाब देना है। जो भी हम लोग यही बोलते हैं कि मतलब मेरे जो हमारा ट्रस्ट, मेरा जो अभी भी विश्वास है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है, पहले से अपॉर्चुनिटीज हो या इंटाइटलमेंट्स हो या सर्विस हो, किसी के दिमाग में आई कि ये कहाँ मिलता है, तो या हो सकता है वो कहीं सुना तो होगा उस, इसीलिए उसने पूछा होगा, तो वो कहीं ना कहीं बनी है, खाली उसको ढूंढना है। तो हम लोग ढूंढने वाला काम करते हैं और फिर उसको ढूंढने के बाद भैया ये मेरे को ये पता चला ये चीज यहाँ पे है।
एंड पना फाउंडेशन में अभी कितने लोग आपके साथ काम करते हैं?
पनाह फाउंडेशन एक है, उसमें हम लोग 12 लोग हैं जो फुल टाइम देखते हैं। पनाह फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हुए, सेंटर हुए, जैसे 7 सेंटर है तो 7 कोऑर्डिनेटर ही उसी में है, तो उनका फुल टाइम उसी में से रेवेन्यू जनरेट करना है और उसी में से सैलरी निकालना है, उसी में से उनका ऑफिस एक्सपेंस निकालना है, और जो कुछ नहीं होगा तो हम ला के देंगे कहीं से। फिर 2-3 लोग है जो इम्प्लीमेंट करने के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब जैसे मैं हूँ, भाविका बहन है, ममता बहन है, वो स्पेशली सेंटर के रिपोर्ट की देखना या सेंटर में क्या काम चल रहा है वो देखना, फिर पनाह फाउंडेशन के अलग रिसिप्ट बनाना, वो सब काम करते हैं। फिर एक मोमो किंग करके है, मोमो किंग एक वेंचर है जो पनाह फाउंडेशन ने चालू किया, वो एक 100% रेवेन्यू मॉडल है, लेकिन उसका एक मेन मुद्दा है कि उसमें लोगों को जॉब देनी है। तो ऐसे 11 लोग हैं जो फुल टाइम उस जॉब मॉडल पे काम करते हैं, और 4 लोग हैं जो उस्ताद मतलब शेफ जो बोलते हैं मोमोज बनाने वाले हैं, उसके साथ हेल्पर हैं, हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं, और एक मैनेजर है जो वो मैनेज करते हैं पूरा। फिर एक ऑनलाइन साथी है, उसमें हम लोग 3-4 लोग का स्टाफ है। तो इस तरह से मतलब मेरे अंडर में अभी 25-26 लोग काम।
वाह, अमेजिंग. और नरेश, इतना सब अभी काफ़ी साल हो गए और काफ़ी सारा काम भी कर रहे हो, इतने सारे अलग अलग डाइवर्सिफाई करके, मतलब मोमो किंग या यूनियंस या लीगल वर्क कंसल्टेंसी, बहुत सारा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब आप इम्पैक्ट के बारे में सोचते हो या सोचते हो कि अच्छा ये ना सबसे अच्छा हुआ है अभी तक, या दो तीन चीज़ें जो आपके दिमाग में रह जाती है जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ कहानी हो सकती है किसी की, कुछ नंबर हो सकता है, जो भी आपके मन में आए, बट वुड लव टू हियर कि आपके हिसाब से आपका या पना फाउंडेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है।
इनफैक्ट में तो जब मैं 2015-16 में जब मैंने भी स्टार्ट है तो एक छोटा सा ऑफिस का कमरा लिया था और मुझे पता है कि हम लोगों ने रिक्शा के लिए 400 रुपये हमें देने पड़े थे। तो अभी ऐसा हो गया कि अहमदाबाद सिटी में अगर कभी रिक्शा यूनियन का स्ट्राइक करवाना हो तो हम लोगों से परमिशन लेंगे और स्ट्राइक करवाते हैं हम लोग उनकी हक के लिए। मैं इस तरह से सोचता हूँ कि ये मेरा एक नेटवर्क है, जैसे ऐसे ही होटल लाइन में इतना बड़ा एक नेटवर्क बन गया, नॉट नेटवर्क बट हम लोगों ने जिसको सर्विसेज थी वो हमसे एक ऐसा फैमिलियर हो गए हैं कि अच्छा नरेश भैया है या पनाह है, तो उस संस्था में वो लोग ऐसे हमारे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो अगर होटल लाइन में किसी को एक शेफ की जरूरत है वो हमको बोलते हैं तो हम लोग उनको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जवाब दे देते हैं, आपको शेफ मिल जाएगा। तो एक शेफ है लेकिन उसके बैकएंड में एक किसी को जॉब चाहिए तो वो हम लोग एक हमारा सेंटर जो है खाली कनेक्ट करता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब डॉक्टर को पेशेंट चाहिए और पेशेंट को डॉक्टर, तो वो एक जो हमारा सेंटर है वो एक कनेक्ट करने का काम करता है। इतना लोगों को हमने कनेक्ट कर दिया है, एक हमारा एक यही इम्पैक्ट है कि मतलब इम्पैक्ट नहीं लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बेनिफिशियरी हैं जिनको हम अगर कभी ये बोलते हैं कि भैया ये करना है तो वो करेंगे हमारे लिए या जो हमने उनके लिए किया है उसके लिए। तो हम लोग कोई कम्युनिटी में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया आज हमको यहाँ पे मीटिंग करवानी है और कम्युनिटी लीडर को बोल दिया भैया तुमको मीटिंग करानी है, तो एक पूरा कम्युनिटी को इकट्ठा करने का जो हम लोग बोलते हैं ना कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, वो हमारा बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है जो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब 2015 में हमने चालू किया तो 4 से 5 बच्चों को इकट्ठा करने के लिए भी मुझे एक बहुत बहुत वो लगा था कि मैं समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैं उनको क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं उनको बोलता था भाई आ जाओ जो पढ़ा पढ़ लेंगे पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ, तो इस तरह से कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा भी लेकिन हमारा भी अच्छा
बहुत ही अच्छा हो रहा है। और नरेश आपकी पेरेंट्स या फैमिली उनका क्या रिएक्शन, क्योंकि आपने जैसे बोला आप काफ़ी बचपन से कुछ कुछ जॉब्स या कुछ कर रहे थे ताकि अपना पढ़ाई का या जो भी आपका खुद का खर्चा था आप वो अर्न करके निकाल रहे थे, तो ये सारे अलग अलग जॉब चेंजेस और उनसे आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था?
जो मेरी कम्युनिटी जहाँ मैं कम्युनिटी में काम करता हूँ वहाँ पे महीने का 8-10 हज़ार घर पे दे दो तो वो इनफ है, बहुत हो गया, मतलब 8-10 हज़ार रुपये घर पे दे दिया है बहुत हो गया, मतलब लड़का कमाता है। इतना ही सेंटिमेंट होता था, मैं जब 2015 में जॉब छोड़ दिया तब भी मैं 4-5 हज़ार रुपये ही शायद घर पे देता था, लेकिन जब 2015 में मैंने ये सोच के जॉब छोड़ दिया कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं बोला मैंने किसी को सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ अपना खुद का करना चाहता हूँ, ऐसा बोल के मैंने घर पे तो बताया, घर पे तो मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब मैं जिसको जानता हूँ वो लोग अभी वो बोलते हैं कि यार मेरे को फैमिली प्रोसेस प्रेशर आता है, ये फैमिली वाले बोलते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे कोई ऐसे लोग थे लेकिन उनको कुछ ऐसा वो नहीं था कि क्या कर रहा है लड़का कैसे है। लेकिन 2016-17 में जब मैंने लगातार 1-1.5 साल पैसा देना बंद कर दिया क्योंकि इनकम नहीं था तो मैं खुद का ही खाली अपना एक्सपेंस निकाल लेता था कैसे न कैसे, तो लगभग 16-17 में मैंने पैसा नहीं दिया घर पे, तब जाके पता चला कि अच्छा इसने अभी जॉब भी छोड़ दी है, कुछ ना कुछ करता रहता है बाहर, लोगों से मिलता है तो अभी इसके पास इनकम नहीं है, तो वो मेरे घर पे पता चलने लगा और फिर उसके बाद उनको एक टेंशन आने लगा कि अच्छा अभी ये क्या करेगा, होटल में जॉब नहीं करता है और एक कुछ समाज से मतलब समाज सेवा या लोगों के पीछे भागता रहता है, ऐसा दिमाग में लोगों मेरे घर पे लग रहा था और कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी आने लगी थी घर पे कि भाई तू क्या कर रहा है, अच्छा वो टीच फॉर इंडिया में अच्छा जॉब था, मतलब यही बोल रहे थे वो लोग, लैपटॉप दिया था, कभी कभी वो टैक्सी घर पे छोड़ने आती थी, तो उस तरह का टोन मारते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो रेवेन्यू मॉडल, इसके लिए भी हम लोगों ने वो रेवेन्यू मॉडल चालू किया, तो 3-4 हज़ार रुपये घर पे टाइम टाइम पे दे दो महीने के 2 महीने के, वो देने के बाद फिर लोग घर में भी अच्छा लगने लगा, अच्छा अभी ये 2-4 हज़ार रुपये दे देता है घर पे, तो वैसा सोच के धीरे धीरे क्लोज होने लगा। तो वो ऐसा ही रिएक्शन था, तो मेरे अभी भी मेरे घर पे कोई ऐसा नहीं पूछता है कि आपको अभी तो फैमिली है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लेकिन 2018 तक मुझे ऐसा कोई नहीं पूछता था कि आप कितना कमाते हो कितना खाते हो कितना यूज करते हो, लेकिन 2-4 हज़ार रुपये दे दो तो इनफ है।
Great. तो फिर नरेश, मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपकी बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है, मतलब पर्सनल जर्नी भी, कि आपने इतने यंग एज पे इतने डेडिकेशन से, मेहनत से, जुगाड़ करके अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, और आपका वो मतलब सॉर्ट ऑफ अम्बिशन भी था कि मुझे ये करना नेक्स्ट, अच्छा अभी इंग्लिश, अच्छा अभी ये मैं खुद का करूँगा, तो काफ़ी बढ़िया जर्नी रही है आपकी। तो आप दूसरे लोगों को क्या एडवाइस देंगे या क्या लर्निंग शेयर करेंगे या सलाह देंगे उनको जो शायद आपकी तरह कुछ इम्पैक्ट करना चाहते हैं?
ऐसा तो मतलब आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जहाँ पे भी मैं जाता हूँ या कोई मेरे से ऐसा पूछता है तो मैं वो यही बोलता हूँ कि मतलब मैं अगर 2015 में ये डिसीजन नहीं लेता कि भाई मुझे ही करना है, जो भी करना है, जैसे भी करना है, मैं वो ऐसा सोचता था। मेरे पापा मम्मी को 5 साल बाद, मतलब जो मुझे करना है मेरे पापा मम्मी के लिए करना है, लेकिन 5-10 साल बाद तो मेरे पापा मम्मी मर जाएंगे, फिर मैं किसके लिए करूँगा। तो वो इस तरह का दिमाग में भी था मेरे, मैं जो कर रहा हूँ उसको, उसके ऊपर मुझे खुद को विश्वास है तो वो चीज़ हो ही जाएगी, वो होना ही है। और हाँ, एक तो ये है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास होना चाहिए, और ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मतलब जब मैं 15 में था तो मुझे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता था, तो वो मैंने सीख लिया। वो कंप्यूटर चलाने के लिए तो लोग मिल सकते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर चलाने वाले लोगों को चलाने के लिए लोग नहीं मिलते। तो वो मेरे दिमाग में ये था कि भाई मुझे ये तो कंप्यूटर चलाना तो सीखना ही है, लेकिन कंप्यूटर चलाने वाले लोगों को भी तो चलाना सीखना है। तो वो दिमाग में लेके मतलब एक कॉन्फिडेंस भी था और एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो एक उसको मैं लास्ट में जब अभी मैं धीरे धीरे उसको अपने दिमाग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो लास्ट में एंड ऑफ द डे बात आ रही है कि मुझे अपने आप पे विश्वास था कि हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो उसी विश्वास ने मुझे बनाए रखा और मैं इतना बड़ा भी कुछ किया नहीं लेकिन कर दिया कुछ ना कुछ छोटा मोटा, या हम लोगों ने मोमो किंग खोल दिया। मेरे लिए जो जिस स्टेज पे मैं हूँ वो मेरे लिए बहुत है कि मैं जहाँ था और जहाँ से आया मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अपने विश्वास को चलाने के लिए आप सबकी सुनो, मतलब आप सबकी सुनो, सबके लर्निंग को लो, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो मैंने लर्निंग करके ही किया है, सीख के ही किया है। लेकिन सब कुछ सीख लो, आपके विश्वास को चलाओ, आपके विश्वास के ऊपर चलो। आपका मतलब विश्वास एक पर्पज हो जाता है ना कि भाई मुझे ये करना है, तो मेरा वो एक पर्पज बन गया कि भैया मैं अपने कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। वो क्या करूंगा वो सोच लेंगे हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। तो वो विश्वास से लेके पर्पज में बदलने की चीज के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके विश्वास को हो सकता है तो मतलब तोड़ने का नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग है, किसी और का विश्वास अलग हो सकता है, पर्पज अलग हो सकता है, तो वो अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। आप अपने अनुभव को शेयर कर रहे हो, अगर आपको अपने अनुभव या अपने काम पर विश्वास नहीं है तो हो सकता है आप उसके विश्वास पर उतर सके, उसके रास्ते पे चलने लगो। लेकिन मेरे साथ जो 5-6 साल में जो जर्नी हुई है उसमें मैंने बहुत सारे लोगों की सुनी है, मतलब सुनी है इन द सेंस कि मैंने उसकी लर्निंग को अपने अंदर लिया, एक्सप्लोर किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो करना है वो मैंने खुद ही किया है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि लोग जलते हैं, लेकिन वो गलत, मतलब यह वो गलत नहीं है। जब तक आप किसी से जलोगे नहीं तब तक आपके अंदर एक करने का वो जोश नहीं आएगा। तो आप किसी से पॉजिटिव वे में जलन करो, जलो कि अच्छा ये इसने इतना अच्छा कर दिया, इसने इतना अच्छा कैसे किया, तो इसने इतना अच्छा किया तो ये कैसे किया, तो उसको एक लर्निंग करो। फिर ऐसा नहीं कि उसने जो किया वही तुम करो। तो मेरे दिमाग में है कि आप सुनो सबकी, करो मन की, मतलब इस तरह से मैं बोलता हूँ।
लव इट, सबकी सुनो बट करो अपनी, ग्रेट। और नरेश, अगर लोग जो सुन रहे हैं उनको शायद आपकी पर्पस में जुड़ना है या पाना फाउंडेशन के साथ जुड़ना है या कुछ हेल्प करना है, कहाँ पे वो रीच आउट कर सकते हैं आपको?
तो वैसे तो अभी हम लोगों का गूगल पे बहुत अच्छा प्रेजेंस है, तो गूगल करके कभी हम लोग अपने नीड शेयर करते रहते हैं। फेसबुक पे पर्सनली मेरे फेसबुक पे मैं हमेशा कभी लैपटॉप मांगता रहता हूँ, कभी कोई बेनिफिशियरी का कुछ इशू आया तो उसके लिए कनेक्शन मांगता रहता हूँ, कोई एडवोकेट है तो मैं उसका लीगल एडवाइजरी मांगता रहता हूँ, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की हेल्थ की सर्विस मांगता रहता हूँ। वो दिस ऑल सर्विसेज गोज टू द डायरेक्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि हम लोगों को ऐसा विश्वास, मतलब मुझे जो विश्वास है, मेरा जो इनर वॉइस बोलता है कि सब कुछ है, ऑलरेडी है, खाली आप रीच आउट करो। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको कम्युनिटी में जाके हेल्थ सर्विस देनी है, कम्युनिटी में आके पढ़ाना है या कुछ करना है, तो दे कैन रीच आउट टू अस। और कोई ऐसे भी होते हैं कि भाई इसको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होती है जो हमको नहीं पता होती है, तो हमारे पास एक सेपरेट अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आपको कोई स्कीम पता है तो आप पनाह फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, और फेसबुक के पेज पे जाओ, और कुछ गवर्नमेंट की नई स्कीम्स पता है तो आप वहाँ पे जाके आप बताओ, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इस तरह से।
अमेजिंग, थैंक यू सो मच नरेश। मतलब जब भी आपसे बात होती है तो एकदम मन खुश हो जाता है और इतना इंस्पायर हो जाती हूँ मैं, कुछ करने का जज्बा इतनी कुट कुट से आती है बाहर। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट।
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
थैंक यू सो मच। Thank you so much for listening to this episode. If you liked this episode, do subscribe to the podcast and follow us on Instagram, Facebook, Twitter, or LinkedIn. We'd love to hear your suggestions, reactions, or even guest nominations. You can DM us on Instagram, our handle is @anewkindofcelebrity, or email us at anewkindofcelebrity@gmail.com. We look forward to meeting you soon. Till then, good luck and take care.